السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14 ديسمبر 2019 پونا کی سرزمین پر جشن غوث اعظم کے نام سے ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں حضور اشرف الفقہا کا ہمارا خطاب سنیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الذنوب والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سلام و سلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تھوڑا تھوڑا جگہ آگے ہے, آپ سڑک آئیے, آنے والوں کو پیچھے جگہ تنگ ہوتی, تھوڑا تھوڑا سڑک جائے. رضا پیلا رقم تفسر مجالس فافسحوا. قرآن فرماتا ہے جب کہا جائے سڑک نہ ہو تو سڑک جاؤ. حدیث میں آیا جو اپنے مومن مسلم بندے کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جگہ کشادہ کرتا ہے. آپ اتنا سڑکے جنت میں اتنا آپ کو مل گیا. ہر مجلس میں اسی طرح سڑک سڑک کے بیٹھو تو کتنا بڑا پلاٹ مل جائے گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر مولانا نے کہا کچھ تشریح کر دے, مجھے تشریح تو آتی نہیں, اپنے جذبات بیان کر دیتا ہوں. گزرے جس راہ سے
وہ سید والا,
وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین ہم بگے سارا ہو کر. پہلے شیر کا مزاج اور شیور سمجھو. لفظ وہ جو آتا ہے تعظیم کے لیے آتا ہے.
بے شک
میرے استاد وہ ہیں. یہ لفظ وہ جو ہے اردو میں اشارے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی معظم شخص کی طرف اشارہ کرنے میں اشارہ بھی ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کا اظہار بھی ہوتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے, صرف مدینے کی راہ سے نہیں, عام ہے,
बहुत खूब।
मक्के से गुजरे या मेराज में आसमान और मामला मना कर,
बेशक
सिर्फ मक्के और मदीने की बात नहीं है, आम लग्न फरमाया गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, इसकी तशरीह की तो जरूरत नहीं है। सैयदे वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाअज़मत खिताब है, वो सैयद भी है और सैयदे वाला भी है, सैयदों के अफसर भी हैं, सैयदों के आबाओ अजदाद की असल भी हैं, सैयदों के सरदार भी हैं। फरमाते हैं गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, अंबर एक खुशबू है, आजकल उसकी कीमत 80,000 रुपया तोला है। अंबर खालिस अगर मिल जाए, अगर आप एक मरतबा सींग में तिनके में लगाकर अपने कपड़े पर मल लें, तो वो एक दो दिन नहीं कई हफ्तों तक जिधर आप जाएंगे लोग उस खुशबू को महसूस करेंगे। माजून में अंबर डालते हैं तीन लोग, खमीरे गाव जुबान अंबरी जवाहिर, वो नकली अंबर डालते हैं, सही अंबर अब मिलता भी नहीं। मुझे हिकमत के चैप्टर खोलने नहीं है, सिर्फ ये बताना है बहुत कीमती खुशबू है और ये पैदा कैसे होती है। एक समुंदर में मछली है जिसका नाम ही अंबर है, अल्लाह ताला ने उसके लीवर में ये अंबर पैदा किया है। जब वो लीवर उस अंबरी खून से भर जाता है तो वो बाहर समुंदर से आकर रेत के ऊपर वो उगलती है, और उसके उगलने की जगह हर जगह नहीं, एक महफूज मकाम पर उगलती है। इसको तलाश करने वाले तलाश कर करके घर करके जहाँ वो मिल जाता है उसे हासिल करते हैं। बहुत सी खुशबू को अल्लाह ताला ने जानवरों में भी पैदा कर दिया, जैसे मुश्क, ये मुश्क कहीं जमीन से नहीं निकलता है बल्कि होतन के हिरन की नाक में वो खून जमा होता है, और अल्लाह ताला उस खून के अंदर ऐसी खुशबू अता फरमाता है कि बेहिस वो खुशबू होती है। हिरन का शिकार करने वाले पहले उस होतन के, होतन ईरान का एक शहर है, मुल्क होतन, हर हिरन में खुशबू नहीं होती, उसी इलाके के हिरन में खुशबू होती है। इसी तरह मेरे दोस्तों, हर जगह के इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ जगहें ऐसी हैं वहाँ गोश पैदा हो जाते हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ गरीब नवाज पैदा होते हैं, कुछ माएं ऐसी हैं कि उनके पेट से गोश खाजा का जहूर होता है। इसी तरह से रब्बुल आलमीन ने हर मछली और हर हिरन को ये इस्तेदाद नहीं दी है, वो हिरन जो खुतन में पैदा होता है उसके नाफे के अंदर अल्लाह ताला ने मुश्क की खुशबू पैदा कर दी। ऐसे ही समुंदर के बाद इलाकों में ये मछली मिलती है जिसका साइज कई कई मीटर का होता है, उसके लीवर में अंबर जमा होता है, फिर वो आकर के किनारे पर किसी महफूज जगह उसे अपने मुंह से उगलती है, अंबर हासिल करने वाले उसे हासिल करते हैं। ये बड़ी कीमती खुशबू है, जहाँ रखी जाएगी वहाँ से उसका खुशबू का की लपट उठेगी। एक है जमीन और एक है अंबरे सारा। अंबरे सारा उसको कहते हैं कि जहाँ अंबर लगा दिया जाए वहां से अंबर की खुशबू उड़ती हुई नजर आएगी। अगर कपड़े में अंबर लगाए तो जहाँ आप जाएंगे अंबर की खुशबू रास्ते में उड़ती हुई जाएगी। अंबरे सारा आला हजरत फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस राह से गुजरे वहाँ जमीन अंबरे सारा हो जाती है, हमेशा अंबर की खुशबू उड़ती हुई महसूस गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से जो खुशबू निकली है और मदीने और मक्के की गलियां जिससे खुशबूदार हुई है, ये इस नाक से तो कुछ लोगों ने सूंघा है लेकिन आज भी जो रूहानियत में मोहब्बत की नाक रखते हैं उन्हें आज भी मुस्तफा के दामन की खुशबू वहां जाती है। 15 साल पहले जब मैं हज में गया था और हरम शरीफ की ये तौसी नहीं हुई थी, वहां पर एक जगह थी जहां हजरत उम्मानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा साहब बहन अबू तालिब की बेटी उम्मानी का वहाँ हुजूर की फूफी हजरत उम्मानी का जहाँ मकान था वहाँ से हुजूर की मेराज हुई थी। हमने बार बार देखा है कि वहाँ पर वो जगह बनाई गई थी जहाँ मेराज की शब में हुजूर आराम फरमाते और वो पिल्लर भी तुर्कियों ने बना दिया था जहाँ हुजूर का वो रात बांधा गया था। अहले मोहब्बत उस पिल्लर को सुकून को सुंघा करते थे और कहते थे इसमें से खुशबू आ रही है।
बेशक
मैं वहाँ बैठ कर तिलावत कुछ फासले पर कर रहा था कि कुछ हुज्जत की और तकरार की मुझे आवाज सुनाई दी। मैंने सब उठाकर देखा तो एक नाइजीरिया का नेगरो लंबा चौड़ा काला उस पिल्लर को सूंघ रहा। एक पुलिस वाले ने आकर उसे धक्का दिया और कहा फिर लाए कुछ। उस नाइजीरिया ने क्या किया कि उसको बच्चे की तरह पुलिस वाले को उठाया और जमीन पर दम से मारा। मारने के बाद अपना ये घुटना उसके सीने पर उसने रखा और जो बॉक्सिंग शुरू की है तो पुलिस वाला इतनी जोर से चिल्लाया कि हरम गूंज गया। जितने मुतव्वे, मुतव्वे का मतलब वहाँ उलमा को कहते हैं, ये मुतव्वे नहीं है मुतव्वे है। ये सब दौड़ते हुए आए, पुलिस वाले आए और बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ से हटाया और जाकर एक बड़े मुतव्वे को उन्होंने खबर दी। वो आया और पुलिस वालों को डांटने लगा कि तुम हाजियों पर सख्ती करते हो, भगाते हो, लोग पूछते हैं ये क्या है तो ये बोलते हैं हुजूर का बुरा यहाँ बांधा गया था तो शौक में आकर के लोग उसे चूमते हैं, यहाँ कोई सख्ती मत करो लोग भूल जाएंगे। वहाँ एक बुड्ढी खड़ी थी, उसमें सब चले गए। बड़े मुतव्वे ने कहा उस बूढ़ी से पूछो, मैं बोलने लगा, कहने लगा माँ क्यों तू खड़ी है? तो कहा हम इसको चूमने आए सूंघने आए। तो मुतव्वे ने कहा सूंघ के क्या करोगे? बोले उसमें नबी साहब की खुशबू आई। मुतव्वे ने कहा मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, चूमना चाहते? कहा हाँ हम चूमना चाहते। राजा के चुम वो बुद्धि वारस्पति के आलम में उस पिल्लर से लिपट गई और भूख चूम गई। चूमने के बाद हटी तो मतलबी ने कहा खुशबू आई, हाँ 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 हमको खुशबू आई, गोटे ने बड़े तरन के साथ कहा। तो वो भी गया चूमने के सूंघने के लिए, तो कहता है कि हमको तो खुशबू नहीं आई। तो कहने लगी अब तेरी नाक को नहीं आई तो मैं क्या करूं, मेरी नाक में तो खुशबू आई। यहाँ तक तो मामला ठीक है। अब वो बड़ा मतलब हुआ क्या था, अच्छा बरेली की नाक लेकर आई है। उनको भी इकरार है कि हमारी थाना भवन की नाक तो नदी की खुशबू नहीं, मजनू को भी जो बरेली की नाक लेकर आया, मतलब बरेली वालों का जैसा रिश्त लेकर आया, इस पत्थर में भी नदी की खुशबू।
मोहब्बत इश्क मोहब्बत
हमने हरम की जमीन हरम पाक में ये सुना है। अच्छा बरेली की नाक लेकर आई है और मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया। मैं तो झूम पड़ा, ऐ सरकार आला हजरत, हम तुम्हारे बलिहारी जाएं, तुम्हारे कदमों को झूम लें, क्या आपने इश्क का अंदरे सारा सारी दुनिया है, आज हर इश्क वाले की निगाह और नाक में नबी अकरम की खुशबू पत्थरों में महसूस होती है। इसी तरह अरब की गलियों में जहाँ जहाँ मुस्तफा गुजरे हैं, गुजरे विश्राम से वो सैयदे वाला होकर रह गई सारी जमीन अंबरे के हुजूर नजर नहीं आते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जाते तो हम किसी से पूछते नहीं कि तुमने हुजूर को जाते हुए देखा है। फरमाते हैं नहीं, जिस गली से खुशबू आती है उधर से निकल जाते हैं। जो सजदे वाला होकर रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, इसका हर हर शेर तशरीह के लायक है। मुझे तो ज्यादा तशरीह आती नहीं इतनी, मैंने सिर्फ शेर को समझाने के लिए उसका तर्जुमा कर दिया। एक शेर तो ये था, दूसरा शेर सुनो। मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा, ये हुजूर से जन्ना पीर पीना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान की शान में एक शेर है। फरमाते हैं मुस्तफा के तने साया का साया देखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हम सुन्नियों का ये अकीदा है, जमहूर उलमा का ये अकीदा है, सहाबा किराम की निगाहों का ये मुशाहिदा है। सहाबा किराम फरमाते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन नाज़रीन का जमीन पर साया नहीं पड़ता था। अब एक सवाल ये है कि हदीस में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धूप में चलते थे तो आसमान पर बादल की तरह, आसमान के नीचे हुजूर के सर पर बादल साया करते हुए चलता था। और कुछ लोगों ने कहा जब साया होता था ऊपर बादल का तो साया कैसे पड़ेगा, ये वहाबी जहन का एतराज। वो हदीस पेश करता है हुजूर चलते थे तो बदरी साहिबान बनकर चलती थी, तो हुजूर का तो साया वैसे नहीं होगा, हम भी बदली में खड़े रहते हैं तो हमारा साया नहीं होता है। तो सहाबे किराम ने ऐसे मजहबों के रुख पर तमाचा मारने के लिए इरशाद फरमाया, वला फिर शम्स वला फिर शराब। फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न धूप में पड़ता था और न चिराग में पड़ता था, आग भी जलता था और हुजूर वहाँ खड़े होते थे तो साया नहीं पड़ता था। ये है हमारा अकीदा, इससे हटना मत। लोग बोलेंगे हुजूर तो हमारे जैसे बशर हैं तो वो साया ढूंढते हैं और हम कहते हैं जब जाते नजीर होकर निकले तो नजूर पैदा जाना आप जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो जब हम सबका साया है और उनके जैसा कोई नहीं है इसीलिए उनका साया नहीं है। हुजूर का साया नहीं था और औलिया भी मानते हैं जिन्होंने देखा है वो मानते हैं और हुजूर के तने पे साया हुजूर आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा
है। क्या बात
साया तो नहीं है लेकिन साया देखा है ये एक अजीब तजाक की बात
है।
लेकिन साया के दो माने एक साया जो काली काली परछाई पड़ती है पहले साये का मतलब है कि मुस्तफा के तने पे साया उसमें परछाई काला शेर नहीं पड़ता था मुस्तफा का तने पाक ऐसा बेसाया था। अब दूसरा साया मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा साया उसको दूसरा माना जो है साया कहते हैं रिफ्लेक्शन को अक्ष को साया अक्ष के माने में भी आता है और साया परछाई के माने में भी आता है। जैसे कोई कहे मौलाना गुलाम मुस्तफा मुली बशरत का साया है तो क्या ये काली काली परछाई है ये नहीं है। साया के माने परतौ साया के माने परछाई के नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे गौश मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा जिसने देखा मेरी जान जल गए जेबा तेरा। गौसे आजम आपका जलवा किसने देखा मुस्तफा का जलवा देखा ये मतलब है इस शेर का। और साया कहकर के ये बताया जिसका जो साया होता है जब वो चलता है आदमी तो साया चलता है कि नहीं चलता
जी
जहाँ रुकता है वहाँ साया भी रुकता है जिस तरह साये वाला बैठता है साया भी बैठ जाता है। अगर साये वाला सो गया तो साया भी सो गया साये वाला मुड़ा तो साया भी मुड़ गया। साया वो होता है के साये वाले की जितनी एक्टिविटीज है जितना उसका चलना फिरना सोना जागना देखना सबको वो अपने अंदर सुनोए हुए होता है उसे बताने की जरूरत नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं आप मुस्तफा के परतों हैं जिस तरह मुस्तफा चलते थे आप वैसे ही चलते हैं जैसे मुस्तफा बैठते थे वैसे ही आप बैठते हैं जैसे वो खाना खाते थे वैसे ही खाना खाते हैं। मतलब है कि आई नए सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना अकीदा ने की
बेशक
मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा जिसने देखा
मेरी
जान मेरे महबूब आपका जलवा जिसने भी देखा उसने आपको तो देखा लेकिन आपके वजूद में मुस्तफा की सुन्नतों का जलवा देखा है मुस्तफा के पैदा को देखा है। आपका चलना सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक था आपका उठना सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक था। ऐसे इतने गौसे आजम मनाने वालों आपको ये शेर नसीहत करता है सिर्फ जश्न गौसे आजम ही मना करके आप अपनी सुन्नियत की हिफाजत नहीं कर सकते बल्कि गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलो खुदा का रास्ता मिल जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुरा औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलना यही हमारे लिए सिराते मुस्तकीम है। और दूसरी बात ये है कि औलिया अल्लाह का जिक्र जो आप करते हैं ये न बिदअत है न नाजायज है न शिर्क है ये एक ऐसा ऐसी रस्म है कि इसे हमेशा करते रहेंगे। लोग अगर आपसे सबूत माने कि वो तो ख्वाजा का जिक्र करने का हदीस में कहां तज़किरा है, तो उलमाए किराम की बारगाह में खिदमत नहीं, मैं अदब के साथ ये हदीस पेश कर रहा हूँ। अन महाज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला आला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया इबादा व ज़िक्रु सालिहीन कफारा व ज़िक्रुल मौत सदका व ज़िक्रुल क़ब्र युक़र्रिबुकुम मिनल जन्ना औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस हदीस को इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब में दर्ज की है। इस हदीस का मतलब क्या हुआ, हदीस के अल्फाज मैंने पढ़ दिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगो, अंबिया का जिक्र इबादत का दर्जा रखता है, नबी का जिक्र करो सीरतुल नबी का जलसा करके इबादत है, मीलादुल नबी का जलसा करके जिक्र नबी करो इबादत है, घर में बैठ कर जिक्र अंबिया करो इबादत है, अरे सागर बिस्तर पर सोकर मुस्तफा का जिक्र करते हो इबादत है। ये कौन कह रहा है जिन्होंने इबादत का सलीका दिया है, इबादत की किस्में बताई हैं, इबादत की किस्मों में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, और मुस्तफा फरमाते हैं इबादत की एक किस्म है जिक्र अंबिया। फरमाते हैं ज़िक्रुल अंबिया इबादत, इबादत में कितना एहतमाम करना पड़ता है। आप नमाज के लिए आते हैं तो क्या दुकान से उठे और आकर के अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं, आपको एहतमाम करना पड़ता है उसका, बाकायदा वजू करें, और वजू करने के बाद आप अपनी आस्तीन को सीधा करें, आयशा देख लें, चढ़ा हुआ है तो नीचा कर लें, गला खुला हुआ है बटन लगा लें, टोपी सर पर नहीं है तो वहाँ मस्जिद वालों ने इतनी इतनी टोपी टोकरे में रख देते, आए टोकरी जैसे सर पर रख लिया, अरे घर से टोपी पहन के आओ ना मेरे साथ, ये चंदे की टोपी क्यों पहन करके आओ, घर से टोपी पहन के आओगे ना तो उसका भी सवाब मिलेगा। जिन लोगों ने रख दिया अल्लाह उन्हें हिदायत दे, टोपी पहन लो यानी बाकायदा हूँ लिल्लाह कानितीन, जब रब की बारगाह में खड़े हो तो पूरे वहार और संजीदगी के साथ, तो ये पूरा एहतमाम करके आप नमाज पढ़ेंगे जब तो आपकी सही नमाज सुन्नत मुस्तहबात के साथ अदा होगी। लेकिन अंबिया के जिक्र के लिए बटन लगाने की जरूरत है,
क्या बात है,
दुरूद पढ़ लो इबादत का दर्जा मिल जाए, वहाँ खड़े होना की जरूरत नहीं है, बैठे रहो और नबी का जिक्र करो इबादत का दर्जा, बिस्तर पर मियां लेट गए इबादत का दर्जा जिक्र नबी करके तुम हासिल कर सकते हो, और सिर्फ मेरे मुस्तफा का जिक्र नहीं, अगर हजरत आदम का जिक्र करोगे तब भी इबादत का सवाब, हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करोगे तब भी इबादत का सवाब, किसी नबी का जिक्र करोगे इबादत, लेकिन सैयदुल अंबिया का जिक्र करोगे तो इबादतों की सरदार वो इबादत। जोर फरमाते हैं ज़िक्रुल अंबिया इबादत। अब कोई सीरतुल नबी के जलसे को बिदअत कहे, मीलादुल नबी के जलसे को बिदअत कहे, तो मैं तो समझता हूँ इस हदीस की सरासर मुखालफत, संजीदा बन के इस्लाम को समझो। हदीस एक ही इस्लाम को नहीं बताती है, जब हदीसों का इल्म आएगा जब पूरा इस्लाम समझ में आएगा। हुज़ूर फरमाते हैं अंबिया का जिक्र मामूली चीज नहीं है, तुम अपने अब्बा का जिक्र करो, भाई का जिक्र करो, मिनिस्टर का जिक्र करो, किसी का दर्जा इबादत का नहीं है, सिर्फ एक जिक्र ऐसा है कि जिसका तुम जिक्र करोगे वो इबादत के दर्जे में। अब माई डार्लिंग का जिक्र करो, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है, ऐसी है, क्या है, कोई इबादत का दर्जा नहीं, लेकिन मुस्तफा की बीवी है मुबारक का
ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों
से रिफात पे लाखों से हम काली काली जुल्फों का जिक्र करो। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं मतलबुल हसन मतलबुल फज्र में
लैलतुल
कद्र में मतलबुल फज्र मांगी जिससे कामत पे लाखों से पतली पतली बुले उसकी पत्तियाँ लबों की नजाकत पे
बेशक
सिर्फ सलाम ही नहीं है नबी का जिक्र इबादत है। और आज के जलसे की मुनासिबत से हुजूर का ये कौल मैंने अर्ज किया है। हुजूर फरमाते हैं जिक्र सालिहीन कफारा बुजुर्गों का अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र गुनाहों का कफारा है। ये गौसे आजम का जो जिक्र आप कर रहे हो, आप जिक्र सुन रहे हो, कर रहे हो, ये जिक्र सालिहीन है। और हुजूर फरमाते हैं सालिहीन का जिक्र सुनना और सुनाना गुनाहों का कफारा। कफारा कहते हैं उस अमल को जिससे नामे आमाल के गुनाह की स्याही मिट जाए, खत्म हो जाए। और कफारा अदा करने में बड़ी दुश्वारी है। किसी ने रमजान का रोजा रखा और बिना उजरे शरई दिल में खा पी लिया, रोजा तोड़ दिया, तो अब इस रोजा तोड़ने का जो गुनाह है कितना बड़ा है कि सिर्फ तौबा करने से माफ नहीं होगा। आज तौबा करने का एक ढंग है, गाल पर तमाचा मार तौबा तौबा तौबा, अरे अपने गाल पर गाय को तमाचा मार जवान से तौबा, ये गाल पर सिर्फ तमाचा नहीं बल्कि लोहे का हथौड़ा लग करके मारो तौबा तौबा, तब भी ये गुनाह माफ नहीं होगा। इसके लिए कुरान ने फरमाया कफारा अदा करो। कफारा कैसे अदा करेंगे, एक रोजा तोड़ा है, इसका कफारा ये है कि पे दर पे कंटिन्यू लगातार 60 रोजे रखे। एक तोड़ा है ना, इतना बड़ा जुर्म है 60 रोजे रखे और एक रोजा कजा की रखे, 61 रोजे रखेगा तब इस गुनाह की कालिख और इसकी स्याही नामे आमाल से धुलेगी। तो मुफ्ती साहब से सिर्फ तौबा करने से नहीं, ये है कफारा। कसम खाया और तोड़ दिया, 10 मिस्कीन को खाना खिलाए या 3 रोजा रखे, तब कफारा अदा होगा। अलग अलग कफारे हैं, गुलाम को आजाद करना, रोजे रखना, कपड़ा पहनाना, खाना खिलाना। अब ये फिकह का चित्र ये उलमा से पूछ लेना, कफारे के लिए बड़ा अहतमाम करना पड़ता है। अरे मेरे सरकार आप रहमतुल आलमीन हैं, हम गुनहगारों के कफारे का बड़ा आसान रास्ता आपने पैदा कर दिया। अल्लाह के महबूबों के जिक्र की महबूब सजाओ गुनाहों का कफारा। सिर्फ करामत सुनना यही जिक्र नहीं है, उनके घर से कदम पर चलने के जज्बात को हासिल करो, ये सबसे बड़ी इबादत है। कफारा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेकों का जिक्र बिना वजह नहीं है। इसका फायदा ये है कि तुम्हारे गुनाह जिसको तुम भूल भी गए हो, तुम्हें याद नहीं है कि तौबा करें, लेकिन ऐ सुन्नियो खुशनसीब हो कि उन भूले हुए गुनाहों का कफारा, उसके मिटाने का रास्ता गौसे ख्वाजा और औलिया-ए किराम का जिक्र है। मखदूम सिबना का जिक्र करो, कफारा मिलेगा। साबिर कलेरी का जिक्र करो, कफारे का सवाब मिलेगा, कफारे का फायदा मिलेगा। आला हजरत का जिक्र करो, कफारे का तुम्हें सवाब दर्जा मिलेगा। जिस वली का जिक्र कर लो, कफारा ही कफारा है। और गौसे आजम बड़े वली है तो बड़ा कफारा अदा होता
है। रिसालत نور اشرف الفقهاء
غوث ذکر اور محبت کا فائدہ سمجھتے ہیں گناہوں کا کفارہ ایک پوائنٹ اور اولیاء کرام کی شان میں ذرا سی بے ادبی کیا ادب بے ادبی کا خیال بھی ہے خسارہ محبت کا انداز کفارہ اور بے ادبی کا خیال یہ خسارہ گھاٹا اور نقصان
بے شک
بحجۃ الاسرار شریف کی ایک روایت ہے جس کو حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے بحجۃ الاسرار آپ نہیں سمجھے حضور سیدنا پیر پیران شاہ دیگان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی حیات کے بارے میں وہ مستند کتاب ہے جس طرح بخاری میں سندوں کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے بحجۃ الاسرار میں سند بھی ہے تاریخ بھی ہے کہاں سنا یہ بھی ہے یہ بحجۃ الاسرار اتنی مستند کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے کہ تین ابدال ابدال سمجھے اب اس کی
تشریح
شام میں 40 ابدال رہتے ہیں اور ابدال کی خصوصیات بہت ہیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں چاہتے ہیں ہوا میں اڑ کر وہاں پہنچ جائے بس اتنا یاد رکھنا ایک صاحب تھے ان سے کہا کہ آپ کے مرید ابدال بن گئے تو پیر صاحب ہنس کے کہتے ہیں ہاں پہلے گوشت تھے اب دال ہو گئے دال سمجھے اب اور دال تو کہا آپ کا مرید تو اب دال بن گیا ہاں بولے پہلے گوشت تھا اب
دال
دال ہو گیا تو وہ اب دال نہیں جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کے مرید تھے وہ گوشت سے دال بن جاتے تھے نام لے لو اس کا نہیں اس نے یہ کہا تھا وہ تھانا بھون کا رہنے والا تو سمجھ گئے انہیں کے پیر گوشت بھی ہوتے ہیں اور انہیں کے مرید گوشت رہتے ہیں وہی دال بن جاتے ہیں ان کو کھانے پکانے کی ہر جگہ یاد آ گئی اور میرے اعلیٰ حضرت تو وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں غور سے سن تو رضا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا رضا اور جن کے شیخ الحنود پہنچے تو کہتے پھر تھے کعبے میں بھی ڈھونڈتے دنگو کا رستہ یہاں کی جنمادی کی یہ الگ الگ چوائس ہے یہ نیچر ہے آدمی کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اسی کا انداز ہوتا ہے تو ابدال وہ ہوتا ہے جو ہواؤں میں اڑتا ہے تشریح کروں تو مجھے رات نہیں گزار دینی پڑے گی ابدال کون ہوتا ہے اوتاد کون ہوتا ہے مجبہ کون ہے اخیار کون ہے یہ سارے کے سارے افراد کون ہیں غوث کون ہے غوث العظم کون ہے غوث الابیاس کون ہے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے اپنی مملکت کے اولیاء کی کیٹی گیری اور ان کے اسٹیٹس بنائے ان میں سے ایک ابدال ہے تین ابدال ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے اب جب ابدال شریف سے ان کا گزر ہوا اور اس مقام اور اس فضا سے جہاں نیچے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ تھی تو اس میں ایک ابدال نے کہا ہوشیار اجنسی آگے حضور غوث اعظم کی خانقاہ ہے میں تو داہنی طرف مڑ کے چلا جاؤں گا تاکہ اوپر سے گزرنے میں کہیں بے ادبی کا انداز نہ پیدا
اللہ
دوسرے نے کہا میں بائیں طرف مڑ کر کے چلا جاؤں گا حضور کی خانقاہ سے گزرنا میں سوئے ادب سمجھتا اب تیسرے ابدال نے کہا یہ تو ہوا ہے کوئی خانقاہ تھوڑی نہ سوچنے کی الگ الگ بات ہے اگر اوپر سے چلے گئے تو حضور کی کوئی بے ادبی اس میں نہیں ہے اس کا اپنا خیال تھا تھنکنگ الگ الگ ہوتی ہے پازیٹیو بھی ہوتی ہے نیگیٹو بھی ہوتی ہے ایک نے کہا میں اوپر سے گزرنا نہیں چاہتا کا ہی مڑ جاؤں گا دوسرے نے کہا میں بائیں مڑ جاؤں گا تیسرے نے کہا اڑنے میں कोई हरज नहीं, सब उड़े। दाएं वाला निकल गया मंजिल की तरफ, बाएं वाला पहुंच गया अपनी मंजिल पर, ये बीच वाले जनाब देखे थे अंधा, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, वहीं से उनके बाजू सल हो गए और उड़ने की ताकत खत्म हो गई, और ठीक वहां से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खानकाह के मेन गेट के सामने जमीन पर धड़ाम से आकर गिर गए, और हाथ पैर में जैसे पैदा लाइस हो गया, और दिल में जो रूहानियत थी वो सल्ब हो गई, एक सुकून की फजा में थे, अब बेचैनी और इश्तराब के आलम में मुब्तला हो गए जनाब, और वहां पर कड़ा रहे हैं, जमीन पर तड़प रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना अली बिन है की जो हुजूर गौसे पाक के अजल्ले खुलफा में थे, बड़े शहीद खलीफा थे, वो अपने पीर से मिलने के लिए आए, तो देखा एक अपाहिज मजबूर जमीन पर कराह रहा है, वहां खड़े हो गए, कहने लगे क्या है, कौन हो तुम, कहां से, या ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ। उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बयान की, मैं ये हूं वो हूं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो तो आपने सुन ही लिया। हजरत अली बिन हैसी के सामने रोकर कहता है, मैं बहुत देर से आवाज दे रहा हूं, मेरी गलती माफ नहीं हो रही है, आप हजरत के शहीद मुरीद और खलीफा हैं, मैं आपको वसीला बनाता हूं, यहां भी सुनिए, मैं आपको वसीला बनाता हूं गौस की बारगाह में, आप मेरी सिफारिश कर दीजिए, मेरे दोस्त तो सुन्नियत और मसलके आला हजरत वहां से चमक रहा है, गौस की बारगाह में वसीला उनके खलीफा बन रहे हैं, और हुजूर की बारगाह में गौसे आजम खलीफा वसीला बन रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा
उसको शफी जो मेरा गौस,
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है,
बेटा
चलता है स्टेप बाई स्टेप अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला फरमाता, आना हो तो ऐसे मत आना, वबतऊ इलैहिल वसीला,
बेशक
जब अल्लाह की तरफ पहुंचना है तो वसीला ढूंढ लो, और मुस्तफा की तरफ पहुंचना है तो वसीला ढूंढ लो, और उसे पर तक पहुंचना है तो वसीला ढूंढ लो। ये सब वसीलों की चैन लगी हुई है, लेकिन समझदारों के लिए, और जिसके दिल की नूरानियत खत्म हो गई है, भैंस के आगे बैंड बजाओ, भैंस बैठी पगड़ा हो, पूर्वी जबान में यही कहते हैं, भैंस के सामने कैसा भी ताल सुर बजाते रहो, आंख बंद करके चारा खा करके वो जुगाली करती रहे, उसे कोई धुन चाहे वो तानसेन की धुन हो, या छत्तीसगढ़ का बैंड हो, या 40 गांव की शहनाई हो, जो मशहूर जगहों की बात बता रहा हूँ, कुछ भी बताओ, तो भैंस के आगे बैंड बजाओ, भैंस बैठी पगड़ा गए, जिसका दिल एंड बैंड हो गया है, हदीस पढ़ो या बुजुर्गों की बात पढ़ो, वो उसके ऊपर असर नहीं होता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब है, और जिसके दिल में रिक्कत होती है, थोड़ी सी बात सुनता है और काबिल कबूल उसके सामने, बस ऐसे ही दिल मांगो कि अल्लाह हमें कबूल करने वाला है। अली बिन हैकी को सबदार ने वसीला बनाया, तो वसीला कौन बनाता है, जो मजबूर होता है
जी,
वसीला किसको बनाता है, जो महबूब होता है, ये है वसीले का अंदाज, मजबूर महबूब को वसीला बनाता है, मजबूर मुख्तार को वसीला बनाता है, और उसकी बारगाह में वसीला बनाता है जो उसके जुर्म को माफ। हजरत अली बिन हैदी को तरस आ गया, बारगाहे गौसे आजम में पहुंचे और अर्ज किया, अर्ज करना ही चाहते थे, गौसे आजम जलाल में थे, फरमाया अली बिन हैदी, तुमको उसने सफारशी और वसीला बनाया है, इसलिए तुम्हारी वजह से मैं उसे माफ करता हूँ। समझे आप? एक ख्याल आया था खानकाह के ऊपर से गुजर जाए तो उसने क्या वादा, अरे वादा ऐसा पड़ गया आज की जमीन पर औंधा हो गया। ये हाल है बुजुर्गों की शान में बेअदबी का ख्याल लाना और जबान से बेअदबी करने का क्या जुर्म होता है वो दोस्तों, फाका देरू या वो दिल अबसार इबरत हासिल करो। दोस्तों हजरत अली बिन हैसी की सफारिश अभी हुई नहीं थी, सिर्फ देख कर हजूर गौसे पाक ने फरमाया हुजूर का गैब तो अपनी जगह है कि शाहजादे का गैब देखो, कि बोले नहीं। और हुजूर गौसे पाक ने तफसील बयान कर दी, हुजूर गौसे पाक ने इशार फरमाया जाओ तुम्हारी सफारिश की वजह से मैंने उसे माफ कर दिया। जैसे ही ये लफ्ज पूरे हुए अली बिन हैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा कि वो अब्दाल साहब के लुंगे और पैदा लाइस हाथ पैर में तवानाई और करंट आ गया और वो उड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। आपने देखा अपने इल्म पर नाज नहीं, अपनी वलायत पर नाज मत करना, बुजुर्गों की मोहब्बत पर नाज करना, अगर आए तो दाद की अब्दालियत सल्ब हो जाती
है।
बड़े बड़े बहे जाए गधा कहे कितना पानी, ये गहरे सरकार है, ये वो दरियाए ना पैदा किनार है, इसे पार करना हमारा और तुम्हारा हौसला नहीं है, बस वही पार लगा दे तो हम पार हो जाएंगे और उन्हीं का फैज आए तो हम कामयाब हो जाएंगे। मैंने करामतें भी बयान की हैं, आज अजमत औलिया और जश्न औलिया के सिलसिले में ये बात आपको बता कर जा रहा हूँ। खूब फिक्र अल्लाह वालों का करना ताकि हमारे गुनाहों का कफारा होता चला जाए, और अंबिया का फिक्र करना ताकि इबादत के खाने में सवाब लिखा जाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक में खैर अता फरमाए। और आखिरी नसीहत मेरी ये है कि अल्लाह वालों ने शरीयत का अमल किया है, कुरान फरमाता है मेरा वली जो होता है वो सराफा तकवा होता है, गैर मुत्तकी वली हो ही नहीं सकता।
बेशक
आप आज उनको 10-10 अंगूठिया पहन कर ढूंढ फोड़ करते वली बनते, गुमराही है।
बेशक
बड़े बड़े जगह धारी आते हैं लाल पीले कपड़े पहनकर आड़े टेढ़े छोटा लेकर के आँख बंद करते हैं, हाँ तेरे हड़का होगा वली मान दिया, या मेरे कारोबार में बरकत होगी वली मान लिया। ये कारोबार में बरकत देने वाला ये वली नहीं है, शरीयत अगर है उसके साथ और फिर जो बात तुम्हें बताए बरकत की या और किसी चीज की उसकी वो बात अल्लाह रसूल के नजदीक सही। पानी पर चलना भी वलायत नहीं है, हवा में उड़ना भी वलायत नहीं है, हवा में उड़ना पानी पर चलना उसी वक्त अलाव वलायत की निशानी बनेगी जबकि सही निशानी शरीयत की पाबंदी उसमें मौजूद।
बेशक बेशक
अगर ये आपने देख लिया कि वली कौन है, हवा में उड़े ना उड़े वली हो जाए। मैं सब लोगों से पूछता हूँ कभी किसी ने ये पढ़ा कहीं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हवा में उड़े?
नहीं,
उलमा से नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो मुझसे ज्यादा जानने वाले हम और आप एक जैसे बताइए कोई करामत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बता दो कि हवा में उड़े वली मानते हो?
बेशक बेशक
की जयपाल
हवा में उड़ा
उम्मीद हो जाओ
क्या बात है,
हवा में उड़ना में आरे वलायत नहीं है।
बेशक
तकवा में आरे वलायत,
बेशक
मुत्तकी बनकर उड़ता है तो वली है, और अगर जादूगर है वो भी उड़ता है वली नहीं है, जालिम है काफिर है। मेरे करीब नवाज ने कहा वो उड़ा हमको चैलेंज करके गया, हम नहीं उड़े। अरे हमारा उड़ना तो बड़ा भारी पड़ जाता है, हमने तो अपने पांव की खड़ाऊं से काटू उड़ जाए
बेशक
राजा तो बेजान को उड़ाते हैं और बेशऊर को शऊर अता फरमाते हैं, बेअक्ल खड़ाऊं को अक्ल अता फरमाते हैं कि उड़ने वाले को तलाश करके लेके आ गई हुजूर ये गया था
जी जी
मेरे राजा ने उसको सजा नहीं दी। रिवायत में कि खड़ाऊं उसके सर पर फटाफट पड़ गई, लेकिन कोई ये रिवायत नहीं बता सकता है कि उसको खून निकला हो,
जी
मुंहड़ा आया हो, उसके सर का कोई बाल टूटा हो। नहीं, मेरे खाजा की खड़ाऊं सजा देने के लिए नहीं थी। आज हुकूमत करते हैं सबको सजा देने के लिए, हम सत्ता पर आ गए हैं, सुधाओ सबको परेशान करें। वहाँ तो काफिर को पकड़ के ला रहे हैं ताकि उसे सही संवार करके जन्नत का हकदार बनो, और यहाँ कानून बन रहा है कि जो घर हमारा है उसको निकाल।
क्या बात जी जी,
इतना जी ला रहे हैं। हमारे बाप दादा जहाँ पर सुकून की जिंदगी गुजार रहे अब घरों से निकाल रहे हैं, ये हुकूमत। अरे हुकूमत उसको कहते हैं कि उजड़े हुओं को बचा दो, बचे हुओं को उजाड़ना, ये हुकूमत नहीं है,
जुल्म है।
समझ गए? तो मेरे ख्वाजा ने जुल्म करने वालों को बारगाह में बुलाया, चला कहाँ भाग रहा है? आसमान को रोक कर हम पर वो डराव रहा है, हमको दहशत गर्दी करता। निगाह डाली, दिल की दुनिया बदल गई, हाथों पर गिर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाएगा तेरा आज के नाम अब्दुल्ला बयाबानी।
बेशक बेशक,
तुम्हें हम मुकर्रर करते हैं कि जंगलों में दरियाओं के किनारे जो रास्ता भूल जाए उसको रहनुमाई के लिए वहाँ पहुँच जाया करना। आज भी अब्दुल्ला बयाबानी जंगलों में लोगों को रास्ता भूले हुओं को रहनुमाई का दर्श दे रहे हैं। ये है मेरे ख्वाजा की मलाजा, मेरे करीब नवाज का अंदाजे जिंदगी। वो दहशत गर्दी के लिए नहीं जाए, उड़ने वाले और परेशान करने वालों को वक्त का रहनुमा बना दिया, जो मंजिल से दूर थे उन्हें मंजिल पर पहुंचा। यहाँ मंजिल के अंदर है तो घर कम से कम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की तुर्बत से तो हुकूमत करना सीखो।
क्या बात,
अल्लाह ताला हम सबको गौसे ख्वाजा की सच्ची मोहब्बत अता
फरमाए,
दिल को रकीक और नर्म बनाए।
आमीन।
अल्लाह रसूल और बुजुर्गों की बात को कबूल करने के लिए हमेशा और मस्जिदों को आया।
आमीन।
नमाज पढ़ोगे
इंशाल्लाह?
सब लोग नहीं बोल रहे, अगर मैं बोलूं बिरयानी खाओगे अब नहीं बोले, यही होना चाहिए। दुनिया के बारे में पूछा जाए तो साइलेंट हो जाओ, और जब दीन के बारे में कहा जाए तो इंशाअल्लाह दिल से बोलो कि इंशाअल्लाह हम नमाज़। इंशाअल्लाह दो तरह से होता है, एक यहाँ से होता है और एक यहाँ से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बदगुमानी नहीं करता, बदगुमानी करना भी गुनाह है। आपने जो कहा है वो यहाँ से कहा, और मुझे अल्लाह से मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ गौसे ख्वाजा के वसीले में इनके इंशाअल्लाह में इस्तेक़लाल और मजबूती पैदा हो, सब यहाँ जो इनके हज के बाद वो नमाजी बने। यहाँ से करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा। एक साहब जा रहे थे बहुत बड़े रईस के, पुराने जमाने में जब कार और नहीं चलती थी घोड़ा पालते थे रईस लोग। उन्होंने अपना पुराना घोड़ा बेच दिया था, नया घोड़ा लेने के लिए वहाँ बाजार में पहले घोड़े बिकते थे। घोड़ा लेने के लिए जा रहे थे, एक बड़े मियाँ उनके दोस्त थे मिलने वाले थे, वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे। दोनों की मुलाकात हो गई, कहा शेर साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले बाजार जा रहा हूँ, मैंने पुराना घोड़ा भेज दिया है, नया घोड़ा खरीदने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से घोड़ा लेकर के आऊँगा। तो बेचारे बुजुर्ग सीधे साधे आदमी कहने लगे, इतनी देर तक आपने मुझसे बात की, कम से कम इंशाअल्लाह वो तो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। कहने लगे इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है, मेरे जेब में पैसा, बाजार में घोड़ा, चलने की ताकत, خریدنے کا انداز. اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے, اللہ چاہے تو گھوڑا کر لوں. وہ بےچارے پڑھے لکھے نہیں تھے, خاموش ہو گئے, انفلیشن ہو گیا, مسجد میں چلے. عصر کی نماز کے لیے جب بڑے میاں جا رہے تھے تو وہی صاحب آ رہے ہوں کھوپڑا گرائے. نہیں صاحب گھوڑا کیا ہوا؟ بولے ان شاء اللہ آپ سے بات چیت ہوئی, ان شاء اللہ میں بازار پہنچا, پھر ان شاء اللہ یہ گھوڑا پسند آ گیا, پھر ان شاء اللہ میں نے سودا پکا کر لیا, پھر ان شاء اللہ پیمنٹ کرنے کے لیے گیا, ان شاء اللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان شاء اللہ جیب کی جیب کٹ گئی. اتنا ان شاء اللہ کی بھر, جہاں ان شاء اللہ کی ضرورت نہیں وہاں بھی آپ کھوتے جا رہے ہیں. میاں نے کہا فاتحانہ انداز میں کاٹ کے اس وقت ایک مرتبہ ان شاء اللہ کہتے میں لگاتار جا رہا ہوں, ان شاء اللہ گھوڑا خریدوں گا تو یہ مصیبت سے تم نجات پا جاتے, اچھا گھوڑا نہ مل جاتا. ان شاء اللہ نہ کہنے کی وجہ سے اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے تم نے ان شاء اللہ, ان شاء اللہ کا بھرا ہوا پیسہ آئے گا تھوڑی نہ ہٹے, جب کہنے کا ٹائم ہے جب تک ان شاء اللہ, اور پھر سے کہہ تو سب سرد سے پتا چلا. تو میری نصیحت, نماز پڑھیں گے آپس میں مل جل کرتے رہیں گے, دوسروں کی ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے, اتنا اگر کر لیا تو تمہاری زندگی مضبوط اور پائیدار بن جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مجھے بھی ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل کر, بے نمازیوں کو سچا نمازی بنا, بے راہ راؤں کو صراط مستقیم پر چلا, بے ادبوں کو ادب عطا فرما. یا رب العالمین, مسلمانوں پر جو پریشانیاں آئی ہیں یا آنے والی ہیں, اپنے فضل سے اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ان پریشانیوں کو دور فرما.
آمین.
ہم سب کو امن عامہ عطا
ظالموں
کے ظلم, حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر اور گمراہوں کی گمراہیت سے بچا کر الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما, روزگار والوں کی تجارتوں میں برکتیں, بے اولاد کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیکوکار. الہ العالمین اپنے کرم سے ہم سب میں اتحاد اور اتفاق پیدا
کر,
اور جلسہ کرنے کرانے اور سننے سننا سنانے والے سب کو اتارے کی شہادتوں سے مالا مال.
آمین.
اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.